আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান কানা নাবিয়্যান ওয়া আদামু বাইনাল মা'ই ওয়াত-তিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আম্মা বা'দ, ফা'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ফাযকুরুনি আযকুরুকুম ওয়াশকুরুলি ওয়ালা তাকফুরুন। সাদাকাল্লাহুল আযীম। বারগাহ রিসালত মে দুরুদ পাক কা নজরানা পেশি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন সালাতান দাঈমাতান বিদাওয়ামিল মালিকিল হাইয়্যিল কাইয়্যুম। কোরআনে মজীদ ফুরকানে হামিদ কি জিস আয়াত মুবারকা কি তিলাওয়াত সে আপনে আপকো মুশাররফ কিয়া, ইরশাদে রাব্বানী হুয়া ফাযকুরুনি আযকুরুকুম, তুম মেরা জিকির করো মে তুমারা জিকির করো। ওয়াশকুরুলি ওয়ালা তাকফুরুন, মেরা শুকর করো আর কুফর না করো। ইস আয়াত বাইনাত সে ইয়ে পতা চলতা হে কি আল্লাহ তবারক ওয়া তাআলা আপনা জিকির করনে কা হুকুম দে রাহা হে। এক তো ইয়ে বাত পতা চলি, লেকিন দূসরি বাত বড়ি অহম হে কি জব হাম উসকা জিকির করেন তো ও হামারা জিকির করেগা। আগর সির্ফ ইয়ে কাহা জাতা কি তুম মেরা জিকির করো তো ভি বাত মুকম্মল হো জাতি, আর জাহির হে বন্দো পর লাজিম হে কি আল্লাহ কা জিকির করে। জিস তরহ কে কুরআনে মজীদ ফুরকানে হামিদ কি দিগর আয়াত মে দিগর মকামাত পর আল্লাহ তবারক ওয়া তাআলা নে জিকির করনে ওয়ালোঁ কি ফজিলত বয়ান ফরমাই আর জিকির করনে ওয়ালোঁ কি আদাওঁ কা জিকির কিয়া। ও কিস তরহ জিকির করতে, আল্লাযীনা ইয়াযকুরুন আল্লাহ কিয়ামাম ওয়া কুউদাম ওয়া আলা জুনুবিহিম, খড়ে হোকর বেঠ কর লেট কর হর হালত মে আল্লাহ কা জিকির করতে, এক লমহে ভি আল্লাহ কে জিকির সে গাফিল নাই রহতে। আর ইস আয়াত মে ফরমায়ে তুম মেরা জিকির করো মে তুমারা জিকির করো। ওয়াশকুরুলি, আর মেরা শুকর করো লেকিন কুফর না করো। ওয়ালা তাকফুরুন, কুফর কা মতলব কুফরানে নেমত না করো, জো নেমতে মেনে তুমে আতা কি হ্যায় উন পর মেরা শুকর করো। আর ইয়ে হকীকত হ্যায় কি উসনে বেশুমার নেমতে ইনসান কো আতা ফরমাই, লেকিন ইনসান ইতনা না শুকরা হ্যায় কি সারি নেমতে মিলনে কে বাদ ভি শুকর আদা নাই করতে। আব ইসকি মিসাল আপ ইয়ে সমঝে কি নীন্দ আল্লাহ কি কিতনি বড়ি নেমত হ্যায়। নীন্দ জব আদমি সোকর উঠতা হ্যায় কিতনা ফ্রেশ হো জাতা, আর আগর নীন্দ আয়ে তব দিমাগ বোঝল হ্যায়, গোলিয়া খা রাহা হ্যায়, নীন্দ নাই আ রহি, ডাক্টরোঁ কে পাস হকীমোঁ কে পাস চক্কর লাগা রহা হ্যায়, নীন্দ নাই আ রহি। কিতনি রাতে আরাম সে পড়কর সোতে হ্যায় আর এসে সোতে হ্যায় কি ফজর কি নামাজ ভি গায়ব কর দেতে হ্যায় নাই কি ফির আরাম সে সো রহে, খেয়াল ভি নাই, কবি শুকর আদা নাই কিয়া। এক দিন আগর সর মে দরদ হো গয়া আর নীন্দ নাই আই, ইয়া কিসি ওজা সে নীন্দ নাই আই, তো দূসরে দিন শিকওয়া শিকায়ত, ইয়ার মে কল রাত কো সো নাই সকা, এসি বেচানি রহি পুরি রাত মানে জাগকর গুজারি, আর উসসে পহলে জো হাজারো রাতে সোকর গুজারি উসকা কোই জিকর নাই, উসকা কোই শুকর নাই কি সুবহ উঠ কে শুকর করে মাওলা তুনে মুঝে বহুত আচ্ছি নীন্দ সুলায়া আর বহুত আচ্ছি তরহ বেদার কর দি, ইস পর শুকর নাই। আর এক রাত বগর নীন্দ কে গুজর যায় তো ওয়াবেলা শুরু, ইয়ে ইনসান কি কাইফিয়ত। তো কহনে কা মকসদ ইয়ে থা কি নীন্দ ভি আল্লাহ কি নেমত হ্যায়, বেদারি ভি আল্লাহ কি নেমত হ্যায়, সেহত ভি আল্লাহ কি নেমত, কিতনি নেমতে উসনে হামে আতা কি লেকিন কবি শুকর নাই। ইসি কো ও কহরা ওয়াশকুরুলি, মেরা শুকর করো। আর শুকর করনে কে ভি দো তরিকে হ্যায়, এক তো আদমি জবান সে শুকর করে, মাওলা তেরা শুকর হ্যায় তুনে মুঝে ইয়ে নেমত আতা কি, মুঝে ঔলাদ দি তেরা শুকর, মুঝে কারোবার দিয়া তেরা শুকর, মুঝে সেহত দি তেরা শুকর। এক তো ইয়ে শুকর কা তরিকা হ্যায় জবান সে শুকর করনা, দূসরা আমাল ও আফআল সে শুকর করনা। ক্যা মতলব, উসকি নেমতোঁ কো উসি কে মুতাবিক ইস্তেমাল করনা ইয়ে ভি শুকর হ্যায়, ঠিক হ্যায় না। উসনে পয়সা দিয়া উসকি রাহ মে খরচ করনা শুকর হ্যায়, উসনে সেহত দি बदनी इबादत नमाज पढ़ना ये भी शुक्र है। उसने मालो दौलत दिया, जकात अदा की, ये भी शुक्र है। सदकात और खैरात किए, ये भी शुक्र है। किसी की मदद कर दी, ये भी शुक्र है। यानी जितनी नेमतें उसने अता की, उन नेमतों को उसी के हुक्म के मुताबिक खर्च करना, ये अल्लाह का शुक्र है। तो वो कहते हैं, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूं, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूं। वश्कुरूली, और शुक्र करो, लेकिन कुफर ना करो। वला तकफुरून, कुफराने नेमत ना करो। अब आइए पहले जुमले पे गौर करते हैं। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूं। एक बात तो समझ में आ गई कि हम अल्लाह का जिक्र करें, ठीक है ना। और अल्लाह का जिक्र कैसे करेंगे? नमाज पढ़ी, अल्लाह का जिक्र हो गया, अल्लाह का जिक्र है ना। ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़र्ब लगाई, अल्लाह का जिक्र हो गया। इल्लल्लाह कहा, अल्लाह का जिक्र हो गया। कुरान की तिलावत की, अल्लाह का जिक्र हो गया। नवाफिल पढ़े, अल्लाह का जिक्र हो गया। ये अल्लाह का जिक्र है ना। तो पहला जुमला तो समझ में आ गया, फज़कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो। हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह हमारा जिक्र कैसे करेगा? अज़कुरुकुम, जब तुम मेरा जिक्र करोगे, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। ये बात समझ में नहीं है, वो हमारा जिक्र कैसे करेगा? हम तो उसका जिक्र कर रहे हैं ना। अब हम कर रहे हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह का जिक्र हो गया। या अल्लाह हू, या हक हू, ये अल्लाह का जिक्र है ना। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अल्लाह का जिक्र है। इल्लल्लाह, अल्लाह का जिक्र है। यानी उसका नाम लेना उसका जिक्र है, ठीक है ना। अब दुनियावी तौर पर भी आप देखें, किसी का जिक्र करेंगे तो उसका नाम लेंगे या नहीं लेंगे? और जब तक नाम नहीं लेंगे, तायुन नहीं होगा किसका जिक्र हो रहा। मिसाल के तौर पर मैं ये कह दूं, फला साहब जो हैं बहुत नेक मुत्तकी परहेजगार हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं, रोजा पाबंदी से रखते हैं, हज करते हैं, जकात देते हैं, सदकात और खैरात करते हैं, यतीमों बेवाओं की मदद करते हैं। कौन? फला साहब। और फला है कौन, ये नहीं पता ना। अब जिक्र हो रहा है, लेकिन मजकूर जो है वो गायब है, जिसका जिक्र किया जा रहा है वो नहीं। और अगर मैं नाम ले दूं कि ये साहब, अगर मैंने नाम ले दिया कि हमारे सत्तार साहब नेक मुत्तकी परहेजगार है, नाम ले दिया, फौरन तायुन हो गया, सबकी नजरें इनकी तरफ उठ जाएंगी, हाँ ये साहब है। पता चला कि जिक्र करने के लिए नाम लेना जरूरी है। और जब हम अल्लाह का नाम लेते हैं तभी जिक्र करते हैं। और वो कहता है तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो हम तो उसका नाम लेकर जिक्र करते हैं, क्या वो भी हमारा नाम लेता है? है ना सवाल। वो हमारा जिक्र कैसे करेगा? क्या वो हमारा नाम लेता? गौसे आजम कहते रहे अल्लाहू 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 करते रहे, तो क्या वो अब्दुल कादर अब्दुल कादर अब्दुल कादर कर रहा था, ऐसे कर रहा था? नहीं। तो उसका जिक्र करना, ये बात समझ में नहीं आई। जब हम अपनी नाकिस अकलों में ये सवाल जो आया और हल नहीं हुआ, हमने मशाइख की बारगाह में पेश किया, उलमा की बारगाह में पेश किया, उन्होंने कहा सुनो, तुम्हारा जिक्र करना तो ये है कि तुम उसका नाम लोगे, और उसका जिक्र करना ये है कि वो तुम्हारी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर दे, फिर लोग तुम्हारा जिक्र करेंगे, फिर लोग तुम्हारा चर्चा करेंगे। ये है उसका जिक्र करना। ये थोड़ी कि वो तुम्हारा नाम ले रहा है, अब्दुल कादर कह रहा है, गौस पाक ने अल्लाहू कहा तो वो अब्दुल कादर कहने लगे। नहीं, उन्होंने अल्लाहू कहा, अल्लाह ने उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर। फिर कैफियत ये हो गई कि विसाले मुबारक को 900 साल भी हो जाएं, फिर भी बगदाद में काफले जा रहे, अजमेर की तरफ काफले जा रहे, लाहौर की तरफ काफले जा रहे। ये है अज़कुरुकुम का मतलब। और दूसरा तर्जुमा, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूं। और तीसरा तर्जुमा, तुम मेरा चर्चा करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूं। इसी आयत के तीन तर्जुमे, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूं। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूं। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा चर्चा करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूं। और उलमा ने, मशाइख ने लिखा कि तुम अल्लाह का जिक्र लोगों में बैठ के करोगे, वो तुम्हारा जिक्र फरिश्तों में बैठ के करे और तुम्हारी मोहब्बत मखलूक के दिलों में पैदा कर देगी। फिर विसाल को कितना ही अरसा गुजर जाए, लोग भूलते नहीं हैं, याद रहते। दुनियादार मर जाए 40 दिन के बाद भूल जाए, 1 साल के बाद भूल जाए, 2 साल के बाद भूल जाए, और अल्लाह का वली इस दुनिया से जाए, अल्लाह का जिक्र करता हुआ जाए, जितना अरसा गुजर रहा है उतने तसरुफात बढ़ रहे। याद उतनी उनकी याद, उनका जिक्र और बढ़ रहा है और फैल रहा, पूरी कायनात में जिक्र हो रहा। ये अज़कुरुकुम का मतलब है, अल्लाह के जिक्र करने का मतलब यह है। अच्छा, जिक्र करते कैसे हैं? अब ये एक सवाल है। अगर आप कहें कि नमाज अल्लाह का जिक्र है, हम कहेंगे बेशक जिक्र है, तो ये तो सब पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं ना, और हर मुसलमान बालिग मर्द औरत पर नमाज फर्ज है। ठीक है, अगर पढ़ रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे, ये तो हुक्म है, फर्ज है, नहीं पढ़ोगे सजा मिलेगी। अगर आप ये कहें कि गौसे आजम को मकाम मिला नमाज पढ़ने की वजह से, रोजा रखने की वजह से, हज करने की वजह से, जकात सदकात खैरात अदा करने की वजह से, तो ये तो और लोग भी काम करते, सारे मुसलमान करते। बहुत से ऐसे मुसलमान हैं मुत्तकी परहेजगार, 5 वक्त पाबंदी के साथ नमाज पढ़ते। ठीक है ना, मसला क्या है? नमाज बेशक अल्लाह का जिक्र है, लेकिन कुछ अजकार ऐसे हैं जो इसके अलावा भी हैं, जो इसके अलावा भी हैं। जिस तरह के आप देखते हैं कि सूफिया किराम के मामूलात में है, मशाइख तरीकत हमारे बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन हमें बताते हैं, मसलन नमाज के बाद 1 तस्बीह अल्लाह समद पढ़ो, 1 तस्बीह सूरह फातिहा पढ़ो, या फिर या रज्जाको पढ़ो, या फत्ताहो पढ़ो, या बासितो पढ़ो, या ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करो। और हमारी अहले सुन्नत की मसाजिद में आप देखते हैं कि फर्ज नमाज के बाद हम ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करते हैं ना, 3 मर्तबा करते हैं और उसके बाद दुआ हो जाती है। इस पे भी लोग इतराज करते हैं कि नहीं नहीं ये साबित नहीं है, हालांकि हदीस से साबित, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही अहादीस से साबित। सहाबा कहते हैं कि हम सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज के इख्तिताम का पता जिक्र से लगाते, जिक्र की आवाज बुलंद होती थी, समझ गए सरकार ने नमाज मुकम्मल कर ली। 3 मर्तबा पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जिक्र अहादीस से साबित। तो कुछ अजकार नमाज के बाद और वो सही अहादीस से साबित हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने न सिर्फ ये कि वो खुद किया बल्कि उसकी इजाजत भी अता फरमाई। अब यही जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह जो हम पढ़ते हैं और लोग इतराज करते हैं, बल्कि उनकी कैफियत तो ये है कि जिक्र तो दूर की बात है, दुआ भी नहीं करते। कभी वास्ता पढ़ा हो अगर मस्जिदों में जाने का उनकी, अव्वल तो हम जाते ही नहीं, जाना भी नहीं चाहिए खैर, तो वो क्या करते हैं, बस सलाम फेरा और फौरन नियत सुन्नतों की, और अगर उसके बाद अगर ऐसी नमाज है कि सुन्नतें नहीं है तो फौरन वापस मुंह मोड़ के चले गए, दुआ की जरूरत ही नहीं। अरे अल्लाह से तो मांग लो कम से कम, अगर और किसी से नहीं मांगते, नबी वली से नहीं मांगते कि शिर्क है, तो अल्लाह से मांगना तो शिर्क नहीं, उससे तो मांग लो, खुद भी नहीं मांगते ना मांगने देते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात फर्ज नमाज के बाद जिक्र करते हैं और दुआ भी करते हैं। सरकार ने फरमाया हदीस शरीफ जिसका मफहूम यह है कि फर्ज नमाज के बाद की गई दुआ जरूर कबूल होती, इसीलिए हर फर्ज नमाज के बाद दुआ करते हैं। अब यह हदीस शरीफ जो आपके सामने पेश कर रहा हूं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं, फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की अपने बेटे को की हुई वसीयत ना बताऊं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जो अपने बेटे को वसीयत की थी, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं? हां या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरूर बताइए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या वसीयत की? अब वो कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को वसीयत की, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैं तुम्हें 2 कामों का हुक्म देता हूं। और दो कामों से रोकता हूं। मैं तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह के जिक्र की वसीयत करता हूं। अल्लाह का नबी अपने बेटे को वसीयत कर रहा है, कौन? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। मैं तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह के जिक्र की वसीयत करता हूं। फिर फरमाया क्योंकि ये कलमा अगर एक पलड़े में रख दिया जाए और आसमानों जमीन दूसरे पलड़े में रख दिए जाए तो ये उनसे ज्यादा वजनी हो जाएगा। अब देख लो, एक जुमला है ला इलाहा इल्लल्लाह और जबान पर कितना हल्का है, पढ़ने में कोई दुश्वारी नहीं है। और अहमियत क्या है, फजीलत क्या है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अगर ये एक पलड़े में और जमीन और आसमान दूसरे पलड़े में तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह उन सबसे वजनी, उन सबसे भारी हो जाएगी। और आगे सुनिए, फरमाते हैं अगर ये जमीन और आसमान गोल दायरे की शक्ल में हो जाएं, गोल दायरे की शक्ल में हो जाएं, तो ये इन्हें चीरता हुआ सीधा अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाएगा। ये कलमा जो है इन्हें चीरता हुआ सीधा अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाएगा। बुखारी की हदीस, तिर्मिजी ने और हाकिम ने अपने सही असनाद के साथ इसको रिवायत किया। ला इलाहा इल्लल्लाह की फजीलत में अब पहली चीज तो यह पता चली कि यह कलमा इतना वजनी है कि जमीन और आसमान एक तरफ और ला इलाहा इल्लल्लाह एक तरफ। कैसा कलमा! और यही हम अहले सुन्नत वल जमात नमाज के बाद पढ़ते हैं 3 मर्तबा। ठीक है, अब बुजुर्गान दीन और ये कामिलीन ने इन चीजों को लिया और इनको लेकर जिक्र शुरू कर दिया। नमाज के बाद तो करते ही रहे, जब सारी दुनिया सो गई ये अपने गर्म बिस्तरों को छोड़कर उठ गए, फजर से पहले तहज्जुद के वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह का विर शुरू कर दिया अल्लाह को राजी करने के लिए। क्या इन पर फर्ज था कि ये फजर से पहले उठकर जिक्र करें? अगर नहीं करते तो कोई गुनाह था? नहीं। एक मुस्तहब फेल को अपने ऊपर लाजिम कर लिया सिर्फ इसलिए कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। और उस वक्त जब मकबूलियत का टाइम है, जब उसकी रहमत पुकार रही है कि है कोई मांगने वाला हम अता कर दें, उस वक्त ये अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तो इन पर रहमतों की बारिश ना हो तो और किस पर हो? इसको कहते हैं ओवर टाइम। हम आपको बता चुके हैं ना, एक है ऑफिशियल टाइम, एक ओवर टाइम। नमाज ऑफिशियल टाइम है, जरूरी है, लाजमी है, नहीं पढ़ोगे तो गुनाह है। और अगर 5 वक्त नमाज पढ़ ली, मैंने 5 वक्त नमाज पढ़ी, कोई कमाल नहीं किया, सब पढ़ते हैं। आपने 5 वक्त पढ़ ली, कोई अल्लाह पे एहसान नहीं किया, ये फर्ज है, नहीं करोगे कयामत के दिन पूछा जाए सजा। ओवर टाइम करो, और ओवर टाइम जो भी करता है उसके अलहदा से पैसा मिलता है दुनियावी एतबार पे। आप देखें ना, किसी कारखाने में काम करें, 8 बजे से 5 बजे तक ऑफिशियल टाइम, जितने मजदूर हैं, 100 हैं 200 हैं 1000 हैं, एक ही टाइम है, 5 बजे छुट्टी होगी, सबके सब चले गए, 8 बजे सबको आना है, सबके सब आ गए, ठीक है ना? नहीं, कुछ लोग हैं हमारे पास भी आते, दुआ करे ओवर टाइम लग जाए, बच्चे छोटे हैं, कुछ अलग से मिल जाएगा कुछ, हमने कहा ठीक है दुआ कर देते। अब क्या होगा, ओवर टाइम क्यों? तनख्वाह के अलावा मिलेगा, मिलता है ना, तनख्वाह के अलावा मिलेगा। क्यों? कि जो ऑफिशियल टाइम था उसके अलावा काम किया है, अलावा करोगे अलहदा से तो अलहदा से मिलेगा, और जो ओवर टाइम नहीं करेगा वही मिलेगा जो सबको मिल रहा। गौसे आजम ने देखा, अरे ये नमाज तो सभी पढ़ रहे हैं, ये रोजे तो सभी रख रहे हैं, जकात सदकात खैरात ये तो सभी कर रहे हैं, ओवर टाइम करो ताकि अलग से दर्जे मर्तबे मिले। इसलिए जब सारी दुनिया सो गई, महवे ख्वाब हो गई, ये उठे बेदार हुए और मुसल्ले पर खड़े हो गए, कभी नवाफिल पढ़े तो कभी तिलावत कुरान, कभी अल्लाह, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह, कभी हक हु, ये सब जरबे लगाते रहे। मालिक खुश हो गया, उसने ओवर टाइम का ऐसा सवाब अता किया, ऐसे दर्जे अता किए कि गौसे आजम बना दे। ये है ओवर टाइम। और हैरत की बात यह है, कुछ लोग ओवर टाइम नहीं करते और ओवर टाइम करने वालों से हसद करते हैं, इनका क्यों मजार बन गया, इनका क्यों मकबरा बन गया, इनका क्यों उर्स हो रहा है, इनका नाम क्यों जिंदा है, इनके पास जाके लोग क्यों फातिहा पढ़ रहे हैं, क्यों दुआएं मांग रहे हैं, क्यों मुरादें कबूल हो रही हैं। ये तो हमारे जैसे इंसान थे, क्यों इतना बड़ा मकबरा बना दिया, क्या कर दिया, हमारे भी तो हाथ है, इनके भी तो हाथ। और ये तो वली की बात है, वो तो माजल्ला नबी को यही कहते कि उनके भी दो हाथ हमारे भी दो हाथ, उनके भी दो कान हमारे भी दो, उनकी भी आंखें हमारे भी आंखें, तो वो तो हमारे जैसे। हमने कहा अच्छा यही बात है, तो अबू जहल के भी दो हाथ थे, तुम्हारे भी दो हाथ, दोनों एक जैसे हो या नहीं, वो भी तो तुम जैसे। अगर तुम नबी क्यों कह रहे, तो अबू जहल के भी तो दो हाथ थे, उसकी भी तो दो आंखें थी, ये क्यों नहीं कहते कि वो भी ऐसा हम भी ऐसे, तो अबू जहल की तरह। नहीं नहीं नहीं, अबू जहल की तरह नहीं, उनकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हो, जिनकी नालायने पाक से लगे हुए जर्रों तक भी नहीं पहुंच सकते, उनकी तरह। अरे तुम उनके गुलाम की तरह नहीं हो सकते, आका की तरह कैसे हो सकते। तो अब ये नहीं सोचते कि ये ओवर टाइम किए बैठे हैं, हम तो ऑफिशियल टाइम ही पूरा नहीं कर रहे। ऑफिशियल टाइम पूरा किया, फजर पड़ी, खैर अभी नहीं पूछूंगा, खामखई मसला हो जाएगा। फजर पड़ी, जोहर गायब, जोहर पड़ी, असर गायब, असर पड़ी, मगरिब गायब, मगरिब पड़ी, ईशा गायब, और ईशा पढ़ के इतनी देर से लेटे के फजर तो गायब ही गायब। ये है ना, ऑफिशियल टाइम ही पूरा नहीं कर रहे। और उनकी कैफियत, 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज, गौसे आजम, और 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज, इमाम आजम, क्या मकाम है। तो जैसा ओवर टाइम वैसा मकाम, पहले वो काम तो करो जो गौसे आजम बनो, काम तो करो कि इमाम आजम बनो। हंसा था कि नहीं ऐसा क्यों हो रहा, दुनियावी लिहाज से जो भी ओवर टाइम करता है अलहदा से मिलता है। अरे वो खालिक कायनात तो बड़ा मेहरबान है, जो उसका जिक्र करता है वो उस जिक्र करने वाले की मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देता, और ऐसी मोहब्बत पैदा करता है कि उसके विसाल को कितना अरसा गुजर जाए, मखलूक खिंची चली जा रही, चली जा रही है। फज कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूं, तुम मेरा चर्चा करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूं। जब ये सारी जिंदगी अल्लाह को याद करते रहे, उसको नहीं भूले, तो वो खालिक कायनात इनको कैसे भूले। उसने भी इनको याद रखा और इनका फैज ता कयामत जारी कर दिया, और ऐसा जारी कर दिया, ऐसा इनसे राजी हुआ कि जो उनके करीब पहुंच जाए वो उनसे भी राजी हो। ये अल्लाह के मकबूल बंदे ऐसे ही नहीं बने हैं, ऐसे ही नहीं बने, अल्लाह का जिक्र करने की वजह से। और याद रखो, जाकिर को मौत नहीं, जो अल्लाह का जिक्र करता है रात को उठकर फजर से कबल अल्लाह का जिक्र करता है उसको मौत नहीं। क्या मतलब, मरने के बाद भी जिंदा, कब्र में भी उसी तरह जिक्र है और इंशाल्लाह हशर में भी उसी तरह जिक्र। और ऐसी बात नहीं कि आजकल नहीं, हर दौर में अल्लाह के नेक बंदे मौजूद रहे हैं और कयामत तक रहेंगे। जब तक एक भी अहले ईमान, साहिब ईमान मौजूद है, कयामत नहीं आएगी, और जब सब उठ जाएंगे कयामत नाजिल हो जाएगी। न जाने कौन कौन से लोग अल्लाह के नेक बरगुजीदा बंदे इस दुनिया में मौजूद हैं, उसका जिक्र करने वाले, जिनके जिक्र की वजह से हम गुनाहगार अजाब से बचे हुए, अब भी मौजूद। हमारे पीर मुर्शिद और वालिद गिरामी अशरफुल मशाइख हजरत अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफी जिलानी नव्वर अल्लाह मरकदो, फजर से कबल जिक्र करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र, इल्लल्लाह का जिक्र, अल्लाहू हक हु, मामूल में, सर्दी हो, गर्मी हो, बीमारी हो, सेहत हो, बुखार हो, कैसी कैफियत हो, जिक्र जारी, जिक्र कभी नहीं रुका। एक मर्तबा ट्रेन से लाहौर तशरीफ ले जा रहे, मुरीदीन भी साथ थे, तो उनकी कैफियत क्या थी। अब देखो अल्लाह के नेक बंदों की कैफियत देखो, और जिक्र से मोहब्बत देखो, और जिक्र में जो लज्जत पैदा होती है वो वही जानता जो जिक्र करता। फरमाते थे जब मैं रेल में सफर करता हूं तो आवाज आती है ना रेल के चलने, खट 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 आवाज आती है। कभी सफर किया है कहते उसके साथ साथ मैं जिक्र करता रहता, उस आवाज के साथ साथ अल्लाह अल्लाह हक हु हक हु। और जब पटरी बदलती थी तो मेरा जिक्र भी बदल जाता, लाइन चेंज होती थी ना, अल्लाह के बजाय हकू शुरू हो जाते, हकू के बजाय ला इला इल्लल्लाह, ला इल्लल्लाह के बजाय इल्लल्लाह। जब वो चेंज होती थी, लोग फजूल बातों में लगे हुए हैं, अल्लाह का वली सर झुकाए जिक्र में लगा, यह है उनकी शान। तो फरमाते कि एक दफा मैं सफर कर रहा था, अचानक एक जाकिर डिब्बे में आया, रेल के डिब्बे में, दाढ़ी के बाल, सर के बाल गर्द से अटे हुए, जैसे कोई एक दीवाना मजदूर, कपड़े भी कोई साफ सुथरे नहीं, आकर सामने बैठ गया, दूर वाली साहब क़िबला इधर बैठे, वो सामने दूर बैठे, और बैठकर उसने शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्ल, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्ल, ऐसा ऐसा शुरू किया, आवाज बुलंद होते 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 इतनी बुलंद हुई पूरे डिब्बा गूंजने लगा, पूरा डिब्बा गूंजने लगा। और आप जानते हैं कि ट्रेन में हर किस्म के लोग, दुनियादार भी हैं, नेकोकार भी हैं, बदकार भी हैं, कोई रेडियो सुन रहा है, गाने सुन रहा है, अपना वक्त गुजार रहा है, कोई अपने खुश गप्पियों में मसरूफ है, हंसी मजाक सब कर रहे। लेकिन देखने वाली बात यह थी कि वो जाकिर जब जिक्र कर रहा था और उसकी आवाज बुलंद हो रही थी, बजाय ये कि लोग उसको देखकर हंसते, सब पर एक रौब तारी हो गई। जो रेडियो सुन रहा था उसने रेडियो बंद कर दिया, जो हंसी मजाक कर रहा था खामोश हो गया, सब उसकी तरफ देख रहे हैं ये क्या कर रहा है। और उसकी आवाज बुलंद से बुलंद होती चली जा रही, और फरमाते इतनी बुलंद हो गई कि हमें ऐसा महसूस हुआ कि रेल की आवाज कम है, इसके जिक्र की आवाज ज्यादा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह जो जो जिक्र था कर रहा मुसलसल। तो वालिद साहब फरमाते दूर बैठा था, कहते मैंने गर्दन झुकाकर आहिस्ता आहिस्ता दिली दिल में जिक्र शुरू किया, जिक्र खफी। जैसे ही इन्होंने वहां शुरू किया, उसने फौरन जिक्र रोक कर एकदम आंख उठाकर देखा, पता चल गया ना कि यहां कोई और भी है, तार से तार मिल गया, तार से तार मिल गया, बात समझते हो ना, ये एक इशारा है, पता चल गया, उसको महसूस हो गया इस डिब्बे में कोई और भी जाकिर मौजूद है। आंखें बंद करके कर रहा था, जैसे ही इन्होंने शुरू किया उसने आंखें खोली, सर उठा के देखा, और जैसे ही देखा तो दौड़ के उनकी तरफ आया और ऊपर नहीं बैठा, उनके कदमों में बैठा और फिर जिक्र शुरू कर दिया। देखो वली रा वली मिशन आसन, वली वली को पहचान लेता है, एक नजर में पहचान गया, करीब नहीं बैठा, नीचे बैठा कदमों में, जानता था ये कौन सा मकाम रखते, एक नजर में और कदमों में बैठकर जिक्र शुरू कर दिया, और उसी तेज आवाज के साथ। तो वालिद साहब फरमाते मैं ऊपर बैठा जिक्र कर रहा हूं और वो नीचे जिक्र कर रहा, आवाज तेज से तेज होती चली जा, और पूरे डिब्बे पर एक सुकून तारी। जो दुनियादार लोग थे, नौजवान लड़के हंसी मजाक कर रहे थे, वो खामोश हो गए, जो रेडियो सुन रहा था उसने बंद करके रख दिया, और सब हैरत से उसकी तरफ देख रहे हैं। अब ये दोनों जिक्र कर रहे हैं, ये ऊपर बैठे हुए वो नीचे बैठे। अब क्या हुआ, एक साहब थे, उनके दिल में पता नहीं क्या आया, उन्होंने जाकर उसके कान में कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके कान में कह दिया, आग पर पानी डाल दिया। सरकार का नाम तो ठंडा है ना, जिक्र रोकने के लिए नाम लेते हैं ना, अल्लाह के जिक्र में जलाल है, रसूल के जिक्र में जमाल है, उधर जलाल है इधर जमाल है, उधर गैज़ व गज़ब है इधर इधर रहमत और करम। जैसे ही नाम आया, कान में आवाज आई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एकदम उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे आग पर पानी डाल दिया, उसका जिक्र बंद हो गया, और उसने एकदम घूर कर गुस्से में उनकी तरफ देखा जिन्होंने कान में कहा था। अब उनको कुछ समझ में नहीं आया, उसके लिपट गए, खैर उसने उनको हटाया कि कैफियत ही खत्म हो गई सारी, पता नहीं कहां वो सफर कर रहा था, किस मंजिल पर था, दर्जात बुलंद हो रहे होंगे कि कैफियत में था, आंखें बंद थी, लेकिन आंखें बंद करके ये मत समझना जैसे हम आंखें बंद कर ले तो दुनिया अंधेर हो जाए, अल्लाह वाले आंखें बंद करें तो दुनिया रोशन हो जाए, इसलिए कि उनका दिल रोशन है, उल्टी चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, दीदार के लिए आंखें बंद करोगे या खोलोगे, खोलोगे ना, वो आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हम आंखें बंद कर लें दुनिया अंधेर, और अल्लाह वाला आंखें बंद कर ले तो पूरी दुनिया उसके सामने रोशन। न जाने वो किस मकाम पर था, किसका दीदार कर रहा था, किस कैफियत में था। जैसे ही कान में कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो उसकी कैफियत खत्म हो गई, जिक्र रुक गया, ये उसके लिपट गए, उसने इनको अलहदा से हटाया। और आपको हैरत होगी कि वाली साहब फरमाते चलती ट्रेन में से वो उतर गया, चलती ट्रेन में से उतर गया। और उतरा तो कोई उसको नुकसान नहीं हुआ, अगर चलती ट्रेन में से उतरो तो क्या शर होता, आदमी कहां तक घिसटता हुआ जाएगा, कहां गिरेगा, सर फटेगा, हाथ पैर हड्डी पतली टूटेगी। फरमाते हमने देखा चलती ट्रेन में से उतरा और देखा तो सामने चलता हुआ जा रहा, कोई उसको नुकसान नहीं, कोई परेशानी नहीं, ऐसा लगा जैसे ट्रेन रुकी हुई, एक पैर नीचे रखा आराम से उतर खेतों में चलता हुआ जा रहा था। यह है जाकिर की शान, यह है जाकिर की शान। जब वो मुसलसल अल्लाह का जिक्र करता है तो उसका कल्ब जाकिर हो जाता। फिर एक वक्त आता है कि जबान बंद होती है, दिल चल रहा हो। अभी हम जबान से जिक्र करते हैं ना, करते 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 मकामात दरजात मनासिब मिलते मिलते फिर वो मकाम हो जाता है कि सुल्तानुल अज़कार जारी हो जाता, जो दादा हुजूर क़िबला गए, कि जब डॉक्टर देखने आया और आकर उनके कल्ब पर हजरत कुतुब रब्बानी के कल्ब पर आला रखा तो कहा इनके कल्ब से तो अल्लाह अल्लाह की आवाज आ रही, हालांकि जबान बंद थी कल्ब जारी था। इतना जिक्र किया, इतना जिक्र किया कि कल्ब ही जाकिर हो गया, अब जबान बंद है दिल से जिक्र हो रहा, दिल से जिक्र हो रहा। यह ऐसे नहीं होता, एक दो दिन में नहीं होता कि जबान बंद कर ली दिल से जिक्र हो रहा। इसके लिए रियाजत है, मुजाहिदा है, चिल्ला कशी है, सख्त रियाजत और मुजाहिदा करो तब जाके कल्ब जारी होता। फिर उनको ये मकामात, ये दरजात, ये मनासिब मिलते हैं। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूं। फिर उसकी जबान से जो निकलता है अल्लाह तबारक व ताला उसी वक्त उसको पूरा फरमा देता, फिर वो रद्द नहीं करता, उसकी दुआ को उसी वक्त कबूल कर लेता। और जिसके लिए वो दुआ कर दे उसके हक में कबूल, जिसके लिए दुआ कर दे। तो बात यहां से चली कि ऑफिशियल टाइम और ओवर टाइम, तो ये सारे ओवर टाइम तो करते रहे। अब ये लोग जो हैं जो रोकते हैं, क्या जरूरत है कि तुम जिक्र करो, क्या जरूरत है कि तुम वजीफे पढ़ो, ये तुम्हारे पीर साहब ने वजीफे में लगा दिया कि फजर के बाद ये पढ़ो तो जोहर के बाद ये, असर के बाद ये, मगरिब के बाद ये, ईशा के बाद ये, तहज्जुद में ये सारी चीजें कहाँ हैं, किस हदीस में है कि हुजूर ने कहाँ पढ़ो, हुजूर ने कहाँ पढ़ा और सहाबा ने कहाँ पढ़ा और फला ने कहाँ पढ़ा। ये सारी चीजें मौजूद हैं अहादीस में, सारी चीजें अहादीस में मौजूद हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा में जाकिर भी थे, आरिफ भी थे, आलिम भी थे, मुहद्दिस भी थे, फकी भी थे, मुफ्ती भी थे, मुफस्सिर भी थे, सारे थे। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हो फकी थे, मुफ्ती थे, उनका फतवा मदीने में चलता था। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा मुफस्सिर थे, उनकी तफसीर मौजूद। हजरत अबू हुरैरा मुहद्दिस थे और सूफी भी थे। हजरत अबू जर गफारी सूफी थे, खालिसतन सूफी थे, दुनिया से बिल्कुल बेरगबत। बल्कि एक सहाबी से उनकी लड़ाई इसलिए हुई, तुमने ये दो मंजिला मकान क्यों बनाया, क्या तुम्हें दुनिया में रहना है, लड़के चले गए, लड़के चले गए, दुनिया से इतनी बेरगबती। हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह तआला, तो सहाबा में हर किस्म के थे, लेकिन उनको इन नामों से नहीं पुकारा गया, इसलिए लफ्ज सहाबी इतना जामे था कि जब लफ्ज सहाबी कह दिया सब कुछ उसके अंदर आ गया। हुजूर से फैज लेने वाले, तो जिसने कुरान पर गहरी नजर रखी मुफस्सिर हो गया, सरकार से सुना बाकायदा ये हदी, ये आयत इस मामले में नाजिल हुई, ये आयत इस मामले में नाजिल हुई, सरकार से बराह रास्त सुनते थे। और उनसे ज्यादा मुस्तनद कौन, जिन पर कुरान नाजिल हुआ उनकी जबान से कुरान सुनते थे, कितने खुश नसीब थे, जिन पर कुरान नाजिल हुआ उनकी जबान मुबारक से कुरान की तफसीर सुनते थे। मुफस्सिर जिन्होंने हदीस सुनी, मुहद्दिस हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला, इसी तरह दीगर सहाबा। तो पता चला कि ये सारी चीजें सहाबा से साबित हैं, صحابہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا, تابعین نے صحابہ سے لیا, تبع تابعین نے تابعین سے لیا, بزرگان دین نے اولیاء کاملین سے لیا, سلسلہ چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گیا. تو ان تمام اوراد اور وظائف ان کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ قلب کو صاف کیا جائے, قلب کی سیاہی کو دور کیا جائے. تو یہ لا الہ الا اللہ, سرکار نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ. افضل الذکر لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. اب اس لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور زمین و آسمان کو دوسرے پلڑے میں, سرکار فرماتے ہیں یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ہے اور زمین و آسمان پر بھاری ہے. اس کو صوفیاء کرام نے لے لیا اور اپنے اپنے طریقے سے اس کو پڑھا اور پڑھوایا. کسی نے ذکر خفی کیا, کسی نے ذکر بالجہر کیا, جس طرح کے سلسلے چشتیہ میں ذکر بالجہر اور سلسلے نقشبندیہ میں ذکر خفی, اسی طرح دیگر سلاسل میں اپنے اپنے طریقے پر. لیکن یاد رکھیے یہ چار راستے ہیں, قادریت, چشتیت, نقشبندیت, سہروردیت, چار راستے. جس طرح ایک چوراہا ہوتا ہے نا, چار راستے ہوتے ہیں اور کسی بھی راستے سے جاؤ پہنچو گے کہاں, وہیں وہیں پہنچنا ہے. تو کیا ہے, قادری راستے سے جاؤ, کیا ہے چشتی راستے سے, کیا ہے نقشبندی راستے سے, کیا ہے سہروردی راستے. مرکز اور منبع ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, پہنچائیں گے سب وہیں پر, پہنچنا وہیں ہے. تعلیمات مختلف ہیں, تعلیمات مختلف ہیں, طریقے مختلف ہیں, کسی نے کوئی طریقہ ایجاد کیا, کسی نے کوئی طریقہ ایجاد کیا. صرف اس لیے کہ کسی طرح لوگوں کے قلوب اور اذہان کو پاک اور صاف کر دیا جائے, گناہوں کی آلودگی سے پاک کر دیا جائے. اور جب گناہوں کی آلودگی سے پاک ہو جائے گا تو پھر جیسے چہرے کو دیکھتا ہے ایسے ہی دل کو بھی دیکھے گا. ابھی ہم چہرے کو دیکھتے ہیں نا, ہمیں یہ نہیں پتا کہ دل میں کیا ہے, لیکن اللہ کا ولی جب دیکھتا ہے تو جیسے چہرے کو دیکھتا ہے ایسے دل کو بھی دیکھتا ہے, جیسے ظاہر کو ایسے باطن کو, یعنی انسان کی حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ جاتی. اب ایک بزرگ تشریف فرما ہے, ایک مرید آیا پوچھنے کے لیے انسان کی حقیقت کیسے معلوم, انسان کی حقیقت کیسے معلوم. اپنی ٹوپی اتاری, اس کے سر پہ رکھ دی, کہا جاؤ بازار سے دودھ لے آؤ. پیر صاحب کی ٹوپی اوڑھ کر دودھ لینے چلے. اب جب یہ بازار پہنچا, دکان پہ گیا تو دکاندار کی جگہ کتا بیٹھا ہوا. ارے یہ کہاں گیا, اور یہ کتا تو بڑے آرام سے بیٹھا ہوا ہے دکاندار کی طرح, اس سے میں دودھ لوں, پریشان. اور آگے بڑھا, دوسری گیا تو وہاں دیکھا تو ایک بندر بیٹھا ہوا, اور آگے گیا تو کوئی سور بیٹھا ہوا, اور آگے گیا تو کوئی اور جانور بیٹھا, بڑے پریشان. یہ سارے انسان کہاں چلے گئے, انسان تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا, یہ سارے انسان کہاں گئے. واپس خانقاہ میں فرمایا کیا ہوا, دودھ لے آئے. حضور وہ تو انسان ہی نہیں ہے, دودھ کہاں سے لاؤں. فرمایا اچھا انسان نہیں ہے, کہا نہیں, کہ ہماری ٹوپی اتار دو, ہماری ٹوپی جو ہم نے تمہیں دی تھی نا یہ اتار کے ہمیں دے دو. دے دی, کہا اب اپنی ٹوپی اوڑھ کے جاؤ. اپنی ٹوپی اوڑھ کے چلا گیا, دیکھا تو دکاندار بیٹھا ہوا ہے, اس کو پیسے دیے, اس نے دودھ دے دیا. آگے بڑا حیران ہوں, یار یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کتا بیٹھا ہوا, اور دکانوں پہ بھی جائزہ لیا تو انسان بیٹھے ہوئے سارے. لے آئے دودھ, جی لے آیا. حضور معاملہ سمجھ میں نہیں آیا, پہلے گیا تھا تو کہیں کتا بیٹھا ہے, کہیں بندر ہے, کہیں فلاں ہے, کہیں فلاں ہے, سارے جانور, انسان کوئی نظر ہی نہیں آیا, اور اب گیا ہوں. اب معاملہ برعکس. فرمایا پہلے تم ہماری ٹوپی اوڑھ کر گئے تھے, یہ اس کی برکت تھی کہ ان انسانوں کی حقیقت تمہیں نظر آ گئی, ان انسانوں کی حقیقت تمہیں نظر آ گئی, اور اپنی ٹوپی اوڑھ کر گئے تو سارے انسان ہی نظر آئے. ارے جب ٹوپی میں یہ کرامت ہے تو جس کی ٹوپی ہے اس کی کیا کیفیت ہے. اللہ والے جس چیز کو استعمال کر لیں اس میں برکت ہو جائے, وہ صاحب کرامت ہو جائے, تو جس کے جسم سے لگی ہے اس کا اپنا مقام کیا ہوگا. اس لیے हम जाहिर को देखते हैं, अल्लाह का वली बातिन को देखता है। वो जैसा दिन की रोशनी में देखता है ऐसा ही रात की तारीकी में देखता है, जैसा वो तुम्हारे चेहरों को देखता है ऐसा ही तुम्हारे दिलों को भी देखता। इसीलिए अल्लाह के वली की बारगाह में जाओ तो अपने लिबास को मत देखो, अपनी जबान को मत देखो, अपने दिल को देखो और साफ करके जाओ। सरकार ने फरमाया इत्तकू फिरासत अल मोमिनीन फइन्नहू यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से डरो इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता। अब ये जाहिरी नूर है ना रोशनी, इसमें हम देख रहे हैं, हमें नजर आ रहा, ये अल्लाह का नूर नहीं, जाहिरी नूर है। जब जाहिरी नूर की ये कैफियत है तो जो अल्लाह के नूर से देखे उसकी क्या कैफियत हो, जो अल्लाह के नूर से देखे उसका क्या मकाम होगा। इसलिए कहा कि वलीउल्लाह की बारगाह में जाओ तो अपने दिल को साफ करके जाओ। उसकी नजर तुम्हारे लिबास पर नहीं है, उसकी नजर तुम्हारे चेहरे पर नहीं है, उसकी नजर तुम्हारे दिल पर है कि दिल में क्या। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने जमाने के बड़े जलीलुल कद्र वली, मादरजाद वली और वली कामिल गुजरे। गुज़िश्ता साल मुझे उनकी बारगाह में हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ, पूनिया में, तुर्की में। अजीम शान बुजुर्ग, और बुजुर्गों की बात अजीब है, हम दो घंटे की तकरीर में वो बात ना कहें जो अल्लाह का वली एक जुमले में कह दे, एक जुमले में। क्यों? जब वो इबादत करता है, रियाजत करता है, तकवा परहेजगारी इख्तियार करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके कल्ब और जहन पर हिकमत के दरवाजे खोल देता, कल्ब और जहन पर हिकमत के दरवाजे खोल देता है। फिर उसकी जबान से जो अल्फाज जारी होते हैं वो अल्फाज नहीं होते, वो रुजदो हिदायत के मोती होते हैं जो झड़ रहे होते। और सुनने वाले अगर मोती को चुन ले तो फिर समझो वो कामयाब हो जाते। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह मसनबी उठाकर देखिए, जा बजा उनके इर्शादात भरे पड़े, हिकायत भरी पड़ी। एक हिकायत बयान करते हैं, उससे सबक देते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर हिकायत बयान करते हैं। और ये मसनबी बारगाह रिसालत में भी मकबूल है। फरमाते हैं मैंने बहुत से इंसान देखे जिनके जिस्म पर लिबास नहीं था। बहुत गौर से सुनिए, अल्लाह के वली को की बात को समझना आसान नहीं है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैंने बहुत से इंसान देखे जिनके जिस्म पर लिबास नहीं था, और बहुत से लिबास देखे जिसमें इंसान नहीं था। समझ गए बात? बहुत ऊंची बात है। बहुत से इंसान देखे जिन पर लिबास नहीं था, और बहुत से लिबास देखे जिनमें इंसान ही नहीं था। हकीकत समझ गए, नजर डाली, अरे देखने में तो इंसान लग रहा है, इसकी हकीकत, इसके ये कारनामे, इसके ये आमाल, ये इंसानों वाले आमाल हैं, ये इंसान है। कहने का मतलब ये कि लिबास था लेकिन उसके अंदर इंसान नहीं था। कहने का मकसद ये था कि लिबास हो और अंदर इंसान भी हो, इंसानियत भी हो, और वही इंसान है और उसके अंदर इंसानियत है जो इंसान कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चले। हकीकत में वही इंसान। हर कोई कहता जी मैं इंसान हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं मुत्तकी हूं, मैं परहेजगार हूं। कुरान उठाकर देखो, कुरान किसको ईमान वाला कह रहा, कुरान किसको एहसान वाला कह रहा है, और कुरान किसको मोमिन कह रहा है। कितनी बड़ी बात, कितने इंसान देखे जिनके जिस्म पर लिबास नहीं था, और कितने लिबास मैंने ऐसे देखे जिसके अंदर इंसान ही नहीं था। यानी वो लिबास पहने हुए थे लेकिन उनकी हकीकत ये थी कि इंसानियत से गिर चुके थे, उनके आमाल ऐसे थे कि इंसान कहलाने के मुस्तहिक नहीं थे। हकीकत यही, आप देख लें, अगर अपने आमाल का जायजा लें और देखें, क्या इंसानियत यही है कि अपने भाई का हक मारा जाए? क्या इंसानियत यही है कि वालदैन की शान में गुस्ताखी की जाए? क्या इंसानियत यही है कि बीवी के हुकूक अदा न किए जाएं और उसको छोड़कर हरामकारी की तरफ जाया जाए? क्या इंसानियत यही है कि भाई, सगे भाई का हक मारा जाए, औलाद को गलत तालीम दी जाए? क्या इंसानियत यही है कि अमानत में खयानत करके खुश हुआ जाए? क्या इंसानियत यही है कि बेवाओं यतीमों का माल गसब किया जाए और आराम से बैठकर खाया जाए? क्या हमने बहुत बड़ा नेक काम किया है और उसके बाद कहते हैं हम इंसान हैं? हम मुसलमान हैं। अरे मुसलमान होना तो बहुत बड़ी बात है, इंसान ही नहीं, इंसान ही नहीं। कुरान ने या यूहन्नास भी कहकर पुकारा, या यूहन्नलजीना आमनु कहकर भी पुकारा और मोमिन कहकर भी पुकारा, लेकिन पुकारने के अलग अलग दर्जे थे, अलग अलग मकामात थे। इंसानियत है, फिर ईमान है, फिर मोमिन होना है, फिर आगे चलकर तरक्की करके वली होना है, फिर आगे मकामात। पहले इंसान तो बन जाओ ताकि फिर बाद में मुसलमान बनो। तो बात यहां से चली कि जिक्र इंसान को जिंदा रखता है, जिक्र इंसान के कल्ब को पाक और साफ करता है, जिक्र इंसान के दिल से शैतानी ख्यालात को दूर करता है, जिक्र मरने के बाद भी कब्र में भी जारी रहता है। जो असल जाकिर हैं और जिनको जिक्र में लज्जत पैदा होती है। अब आप देखते हैं ना, बहुत से लोग ये कहते हैं, बल्कि हम भी कहते हैं कि ये बुजुर्गान दीन रात को कैसे जाग लेते हैं, ये रात को कैसे जागते हैं, हम तो एक रात जागे दूसरे दिन सो रहे। अभी गुज़िश्ता रात जागे थे ना शबे बारात में, दूसरे दिन किसी को फोन कर लो 12 बजे उठा ही नहीं रहा, बैल जा रही। एक साहब को मैंने 4 फोन किए, नहीं उठाए, एक एक घंटे के बाद किए, 5 बजे उनका फोन आया, हजूर मैं माजरत चाहता हूँ सो रहा था। मैंने कहा कल आप जागे थे ना, इसलिए एक रात जाग ले, दूसरे दिन 5 बजे तक सो रहे, जोर भी गायब, उठ के पढ़ ली होगी, खैर असर तो 5:30 बजे अजान होती, मोमिन के लिए हुस्ने ज़न रखना चाहिए, पढ़ ली होगी, खैर बहरहाल। तो हमारी कैफियत ये, लेकिन हम सोचते ये जाग कैसे लेते हैं। अब इसकी मिसाल बताऊं कैसे जागते हैं। कोई फिल्म लगा दी जाए, ठीक है, रात को 2 बजे कोई फिल्म लगा दी जाए, बैठे हुए गौर से देख रहे हैं, पलक नहीं झपकेंगे, कोई सीन ना निकल जाए, कैफियत तो ये है। किसी ने बोला अरे यार ठहरो देख रहा हूँ ना यार, मजा आ रहा है, छोड़ो तुम क्या, वो कहते चाय पी लो, बना रहे नहीं सब छोड़ो, ये देखो ये हालांकि सब झूठ है, झूठ है या नहीं, जितनी फिल्में हैं झूठ है ना, दुनिया इतनी झूठी है, झूठ लिखते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ देखते हैं और झूठ लिखने वालों को अवार्ड भी देते हैं, देते ना अवार्ड, टीवी के अवार्ड की तकरीब बात होती है ना, ये है इन्होंने फलन ड्रामा लिखा था, वो ड्रामा सच था क्या, झूठ था ना, इनको अवार्ड तो बहुत अच्छा लिखा इन्होंने, लोगों ने बहुत पसंद किया, अल्फाजे दीकर ये बहुत बड़े झूठे हैं, इनको झूठ का अवार्ड दो, यही है ना, अरे हकीकत तो यही है, सच तो उसने लिखा नहीं ना, झूठ लिखा, दुनिया इतनी झूठी है, झूठ बोलते हैं, झूठ सुनते हैं, झूठ देखते हैं और झूठ लिखने वालों को अवार्ड भी देते हैं। अब मिसाल मैं इसलिए दे रहा था कि जब वो फिल्म चल रही हो, कोई भी फिल्म हो, मैं किसी उसकी तख्सीस नहीं कर रहा, कोई भी फिल्म हो, या चलो रेसलिंग ही हो, आप वही देख रहे हैं जिसमें आपकी दिलचस्पी है, कभी नींद आएगी नहीं आएगी ना, नींद, पलक नहीं झपकोगे, खाना नहीं खाओगे, पानी नहीं पियोगे, और नहीं देखो देखो कैसे, ये है ना। और अल्लाह वाले हकीकी फिल्म देखते, अल्लाह के नेक बंदे वो हकीकी फिल्म देखते, हकीकी फिल्म देखते हैं, ये झूठों की बनाई हुई झूठी फिल्म में इतनी तासीर है कि तुम्हारी नींद गायब हो जाए तो जो खालिक कायनात इनको मुशाहिदा कराए उसमें कैसे नींद आ जाए, और का मकाम है ना, जब झूठों की लिखी हुई झूठी फिल्म में इतनी तासीर है कि तुम्हारी नींद गायब हो जाए तो जो खालिक कायनात इन अल्लाह वालों को मुशाहिदा कराता है रात को और अपनी रहमतों की बरसात उन पर करता है उसमें कैसे नींद आ जाए, उनको वो मुशाहिदा वो कैफियात उनको सोने नहीं देती, वो जागते हैं कब रात हो और हम अपने रब से मुलाकात करें, हम उन मुशाहिदात को देखें। मेरे वालिद गिरामी अशरफुल मशाइख हजरत अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफी अल जिलानी नव्वर अल्लाह मरकदहु फरमाते थे मुरीदीन से, तुम लोग जो फिल्में ड्रामे देखते हो और हम जो रात को मुशाहिदात करते हैं, अगर तुम वो देख लो तो इन सबको भूल जाओ। इसलिए कि वो झूठे हैं और ये सच्चे, ये झूठे हैं बनाए हुए हैं ना, खामखा के बनाए हुए, और ये सच्चे मुशाहिदात कर रहे हैं, देख रहे हैं। कोई बेदारी में सरकार की जियारत कर रहा है, कोई ख्वाब में जियारत कर रहा है, तो सरकार की जियारत में जो लज्जत है किसी और चीज में हो सकती है, नहीं हो सकती, तो फिर वो कैसे सोएगा, सोएगा वो नहीं। वो कहेगा जिस नींद में हुजूर की जियारत हो जाए हजारों बेदारियां उस पर कुर्बान, हजारों बेदारियां कुर्बान, और जिस बेदारी में जियारत हो जाए हजारों नींदें उस पर कुर्बान। इसलिए नहीं सोते, वो मोहब्बत, वो लगन, वो तड़प, वो कैफियत उन्हें सोने नहीं देती, वो उन्हें जगा देती है और रब की बारगाह में हाजिर हो जाती। और दुनिया वाले हैरत कर रहे हैं कैसे जाग रहे हैं, कैसे जाग रहे हैं, एक मंजर तुम देख लो भूल जाओगे सोने। ये कैफियत, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक झलक देखी थी मिस्र की औरतों ने, हाथ काट लिए थे। कुरान ने कहा वक़त तान आइदिया हुन्ना वकुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाजा बशरा इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, कि खुदा की कसम ये इंसान नहीं है, ये तो फरिश्ता है, ये मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है, इंसान नहीं है। उनके हुस्न जमाल में ऐसी महब हुई, हाथ काट लिए। जरा सा छुरी लेकर उंगली पे फेरो तो कितनी तकलीफ होगी, उनकी उंगलियां कट गईं, तकलीफ नहीं हुई, जमाल यूसुफ में मशगूल हो गई, महब हो गई। तो जब हुस्न यूसुफ का यह हाल है तो हुस्न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या कैफियत हो, तो अगर सरकार जियारत करा दे तो तब क्या कैफियत हो। तो पता चला कि ये जो रात को जागते हैं तो खाली नहीं जागते, इनको मुशाहिदात होते हैं, अल्लाह तबारक व ताला होने वाली चीजें दिखा देता है, और अगर कभी ये चाहें तो जो चीजें हो चुकी हैं वो भी दिखा देता है। ये माजी को भी जानते हैं, ये हाल को भी जानते हैं, ये मुस्तकबिल को भी जानते हैं, ये अल्लाह वालों की शान है। लेकिन सबसे बड़ी वजह जिक्र है कि इन्होंने जिक्र को अपना मामूल बना लिया और उस जिक्र से अपने कल्ब को इतना पाक इतना साफ कर लिया कि उसके अंदर यार के जलवे नजर आ गए, यार के जलवे नजर आ गए। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी प्यारी हिकायत बयान की, फरमाते हैं कि रूमियों और चीनियों में मुकाबला हुआ कि कौन बेहतरीन नक्शो निगार बनाता है, रूमियों और चीनियों में। तो चीनी जो थे वो वाकई नक्शो निगार में बहुत माहिर थे, एक से एक बढ़कर उनके यहां पेंटर और नक्शो निगार बनाने वाला मौजूद, जबकि रूमी जो थे वो थोड़े से कमजोर थे। उन्होंने कहा ठीक है ऐसा करो, एक दीवार इधर बनाओ एक इधर और बीच में एक पर्दा लटका दो। चीनियों से कहा कि तुम इधर एक बाग का नक्शा बनाओ, रूमियों से कहा तुम इस दीवार पे बनाओ और बीच में पर्दा, और लोग देख रहे हैं बैठे। चीनियों ने क्या किया, बेहतरीन किस्म के रंगो रोगन लेकर आए और खूबसूरत लग गए बनाने में, एक से एक पेंटर था, दीवार को ऐसा बना दिया कि देखने में वाकई एक बाग नजर आ रही, इतनी खूबसूरत। और रूमियों ने क्या किया, उन्होंने दीवार को मलना शुरू कर दिया, रगड़ना शुरू कर दिया, साफ करना शुरू कर दिया, इतना रगड़ा इतना रगड़ा इतना साफ किया मिसले आईना बना दी, अगर कोई सामने खड़ा हो जाए उसका चेहरा नजर आ जाए, इतना साफ कर दिया दीवार को। अब जो मुद्दत दी गई थी इस मुद्दत में पूरा करना है, मुद्दत पूरी हो गई, चलो भाई जज साहिबान बैठ जाएं, अब पर्दा हटेगा, पता चलेगा कौन ज्यादा माहिर है, इस दीवार को भी देखा जाएगा उस दीवार को भी, बैठ गए। अब जब पर्दा हटाया तो जो अक्स इधर था वो सब का सब इधर आ गया, भाई अगर आईना रख दो तो इधर का उधर आएगा ना। अब वो हैरान, अरे ये क्या हुआ, हमने तो बड़ी मेहनत की, कुछ तो तब्दीली होती, ये तो बेन ही एज इट इज, जो इधर वही इधर, ये कैसे हो गया, ये क्या किया। उन्होंने कहा देखो हमारे पास ज्यादा काबिल नक्शो निगार वाले नहीं थे, हम जानते थे तो हमसे ज्यादा महारत रखते, हमें यही एक तरकीब सूझी कि इसको रगड़ना शुरू करते, हमने रगड़ा, इसके मैल को साफ किया, गर्द गुबार को साफ किया, इतना रगड़ा कि मिसले आईना बना दिया। अब जज परेशान, फैसला क्या करे, फैसला क्या करे, जो इधर है वो इधर है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते इसी तरह अपने कल्ब को रगड़ो ला इलाहा इल्लल्लाह से, अल्लाह हू से, हक हू से, जिक्र इलाही से इस कल्ब को रगड़ कर साफ करो, गुनाहों के मैल कुचैल गर्दो गुबार को साफ कर दो, जब बिल्कुल आईना बन जाएगा मदीने वाले का जलवा नजर आ जाए, जलवा नजर आ जाएगा, मिसले आईना बना दो, जब तक गर्दो गुबार रहेगा नहीं नजर आएगा। तो इस गर्द गुबार को साफ करने के लिए ही बुजुर्गान दीन ने यह जिक्र का सिलसिला शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाह जो जिक्र करते हैं ना, इसीलिए जिस पे दूसरों को इतराज होता है कि ये क्या कर रहे हैं। हुजूर ने कहा कि असहाबा ने कहा कि अफला ने कहा कि ये इस किस्म के इतराजात करते, इनको असल में जरूरत ही नहीं साफ करने की, इनको जरूरत नहीं, जरूरत हमें है, उनको देखना ही नहीं है, देखना तो हमें है, जलवा तो हमें देखना है ना, तो साफ हमें करना है। तो अगर साफ करना है तो जिक्र करना है, और जिक्र करोगे तो कल्ब साफ होगा, और साफ होगा तो जरूरी नहीं कि मदीने तैयबा जाओ, जालियों के पास खड़े होकर सलाम पेश करो, तब हुजूर करम फरमाएं, यहीं बैठकर आंख बंद कर लो, यहीं पर जियारत, कल्ब साफ होने की जरूरत। किसी ने बेदारी में 70 मरतबा हुजूर की जियारत की, इमाम जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह ने आलम बेदारी में 70 मरतबा हुजूर की जियारत की। हजरत शेख मोहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी नव्वरल्लाहु मरकदो, वो फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल वहाब मुत्तकी रहमतुल्लाह ताला अलैह उमरे पर तशरीफ ले गए या हज पर तशरीफ ले गए। जाराना एक मकाम है, आप लोग जो गए हैं वो जानते होंगे, एक तो है ना मस्जिद आयशा मकाम तनीम जहां से उमरा होता है, वो छोटा उमरा कहलाता है। जाराना जो है वो मक्का मौजमा से बाहर है, थोड़ा सा दूर, जाने में आधा घंटा पौन घंटा लगता है, वो बड़ा उमरा कहलाता है। वहां पे असहाबे हुनैन के मजारात हैं, शोहदाए हुनैन के अभी भी मौजूद हैं। वहां एक मस्जिद भी है, वहां जाकर नफिल पढ़ते हैं, उमरे की नियत करते हैं और फिर आकर उमरा अदा करते हैं, वो बड़ा उमरा कहलाता है। हजरत अब्दुल वहाब मुत्तकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं जाराना गया और जाकर उस मस्जिद में सोया तो एक रात में 100 मरतबा मुझे सरकार की जियारत हो, एक रात में 100 मरतबा हुजूर की जियारत। क्या मकाम और क्या मरतबा हो, जिसको एक मरतबा हो जाए वो कहां से कहां पहुंच जाए, और जिसको 100 मरतबा हो जाए सरकार की कितनी करम नवाजी उस पर हो। पता ये चला कि बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन ने जो ये जिक्र अजकार के तरीके रखे हैं, नमाजों के बाद वजाइफ रखे हैं, इन तमाम चीजों का मकसद यही है कि हमारे कुलूब जो हैं गुनाहों की आलूदगी से पाक और साफ हो जाएं। और आप देखें जब तक आप वजाइफ पढ़ते रहेंगे, कोई भी वजीफा आप पढ़ें, झूठ से बचे रहेंगे या नहीं, गीबत से, चुगली से, किसी की दिल आजारी से, हर चीज से जबान मुसलसल मसरूफ है। मसलन अल्लाह उस्समद पढ़ रहे हैं, अल्लाह उस्समद, अल्लाह उस्समद, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं या कोई भी पढ़ रहे हैं, जब तक पढ़ेंगे फजूल बातें नहीं करेंगे ना, महफूज रहेंगे। जितनी देर पढ़ेंगे उतनी देर इबादत में शुमार होगी, जितना जिक्र करेंगे जबान में असर पैदा होगा, जबान में असर पैदा होगा दुआ कबूल हो जाएगी। इसलिए बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन जो हैं ये वजाइफ बताते हैं, और हमें चाहिए कि इन तमाम वजाइफ को बड़ी पाबंदी के साथ पढ़ें। जब आप पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसके फ्यूज़ बरकात आप देखेंगे, जाहिरी तौर पर भी, बातनी तौर पर भी, रूहानी जिस्मानी तौर पर, बल्कि रूहानी कुव्वत आपके अंदर पैदा होगी। और हर वजीफे के ताबे कुछ मवक्कलात हैं, फरिश्ते अल्लाह का जो भी इसमें पाक है उसके ताबे कुछ ना कुछ मवक्कलात हैं, तो जब इंसान वो पढ़ता है तो वो मवक्कलात उसके ताबे हो जाते हैं, फिर वो उस इंसान के साथ हो जाते हैं, फिर वो उसकी हिफाजत करते हैं, खतरात से बचाते हैं, उसकी इज्जत लोगों के दिलों में पैदा करते हैं, रिजक में बरकत, रोजगार में तरक्की, सारी चीजें उसे मिल जाती। ये है वज़ाइफ पढ़ने का सिला और नतीजा। बार सूरत हमें चाहिए कि जो जो चीजें बताई गई हैं वो आप पढ़ें। और अब रमजानुल मुबारक का मुकद्दस और बाबरकत महीना करीब आ रहा है, इसमें दुआए ज़िल बहर का जो चिल्ला होता है उसके मुतालिक भी हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। और जो जो हजरात वो चिल्ला करना चाहें वो सिद्दीक जमाली साहब के पास नाम लिखवा दें और उसमें उनको इजाज़त दी जाएगी, तो ये ज़रूर करें। और जो अगर नहीं कर सकते तो वो कोई ना कोई वजीफा अपने विर्द में ज़रूर रखें। रमज़ान मुबारक का महीना बड़ी बरकतों और रहमतों वाला महीना है, ताकि इसमें अपने गुनाहों की मग़फ़रत भी हो, कुलूब व अजहान की पाकी भी हो और अल्लाह तबारक व ताला का कुर्ब भी हासिल हो। आइए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह हम सब के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारे सजदों को कबूल फरमा, या अल्लाह हम तमाम अहल तरीक़त जो जो भी वज़ाइफ पढ़ रहे हैं मौला उनको अपनी बारगाह में कबूल फरमा और अपना कुर्ब और अपनी रजा अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन ये तमाम हजरात और ख्वातीन जो दूर दराज मकामात से इस नशिस्त में शिरकत करने के लिए हाजिर हुए, मौला इन सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा। ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔